ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां शरणति। अङ्गश्यामलिं छटाभिरमितुं मन्दे कृतं देवरं जाग्रं जागुदरोचिसं विदधतं पट्टं वरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कंद निवेशितो जलभुजं ध्याये। इसे गुरु गौरांग राधा विनोद बिहारी जी के कृपा से आज खेलन बन रामघाट बिहार बन तपोवन कासरेट ग्राम अक्षरगढ़ चीरघाट से बच्छवन और वहां से गरुड़ गोविंद ये सब स्थानों को दर्शन करके हम लोग यहाँ पर लौटे हैं। सबसे पहले हम लोग खेलन बन आजकल उसको शेरगढ़ करते हैं वहां पर पहुंचे। कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते थे वहां पर विविध प्रकार की क्रीड़ा और राधे जी भी अपनी सहेलियों के साथ में वहां पर खेलती थी क्रीड़ा करती थी विहार करती थी इसलिए उस वन का नाम खेलन बन पड़ा। किसी समय में जटिला राधा जी की सास और राधा जी की ननद कुटिला ये सब राधा जी के विरुद्ध में ये सती नहीं है इस प्रकार से उसकी निंदा करते थे राधा जी का। एक दिन कृष्ण बीमार पड़ गए बहुत से वैद्य इत्यादि आए ठीक नहीं हुए अंत में जोगमाया आई उन्होंने कहा कोई सती नारी जमुना जी से 1000 छिद्र वाले घड़े से पानी ले आए तब तो ये बच सकते हैं कृष्ण अथवा नहीं बचे। सब लोगों ने कहा जटिला तो बहुत सती है नारी है उसको जोगमाया ने 1000 छिद्र वाले एक घड़ा दिया ये जमुना से पानी ले आओ और उसे कृष्ण का स्नान कराने से ठीक हो जाए। वो अपने का बहुत ही सती पतिव्रता स्त्री समझती थी वो वहां गई और पानी भरने के लिए गड़ा उपाया और सब पानी निकल गया वहीं परख करके वो लौट गई चली गई अपने घर। इसके बाद में कुटिला को बुलाया कुटिला भी पानी भरने गई पानी भरा किंतु सब पानी गिर गया वो भी लज्जित होकर के जाओ चली गई किसी को मुख नहीं दिखलाया। तब किसी को भी बुलाया गया, कोई नहीं आया, तो अंत में पौर्णमासी जी ने कहा, राधा जी को बुलाया, अच्छा तुम जाओ तो तुम पानी ले आओ तो कृष्ण बच सकेंगे तो नहीं। राधा जी गई और पानी भरा, एक बूंद भी नहीं गिरा, और पानी को ले आकर के पौर्णमासी जी ने कृष्ण का अभिषेक कर दिया, पानी से स्नान करा दिया और कृष्ण उठ करके खड़े हो गए। और सब लोग कहने लगे, जटिला कुटला ये पतिव्रता नहीं है, ये राधा जी ही पतिव्रता है, इस प्रकार से कृष्ण ने प्रमाणित किया। ये लीला खेलन बन में हुई। वहां से फिर राम घाट में गए और वहां के लीला के संबंध में ये
misunderstood. It can be misunderstood because Now, why accommodate Blessed Shemuel? Because Shemuel is generally in Vrindavan considered to be none other than the Shakya Devi, correct? Yes. But there's another part of Shemuel that flows further, and that is the expansion of Kalindi, one of Krishna's creams in Dwarka. And it was this part of the Jamuna, that Jamuna which goes into the sea, who's the wife of the sun god, that Baladev engaged in this way. He would never act in such a manner with Vishaka, Krishna's dearly beloved. So, in this way, these pastimes went on, and this is the memory and the beautiful movement that we are trying to conjure up when we go to God. And today we have the opportunity and pleasure to make the best of that most holy place, and to bring the blessings and mercies of Baladev and all the Virgin Devis
there. Okay, total report. Translation.
So, on the way to Mount God, we pass through Kiranman. So there, Sri Krishna with his coward boyfriends and Radhika with her sakis would enjoy many types of playful pastimes. Kiranman means to play, so Kiranman. So one time, we know that Jatila, the mother-in-law of Radhika, and Kutila, the sister-in-law, are always giving so many different types of torches to Srimati Radhika. Then in order to rectify this, one time Sri Krishna manifested himself as becoming very sick. That time many types of doctors came and many types of medicines were delivered, but Krishna was not alleviated from his sickness. That time Sri Yogamaya Devi came and said, if anyone can bathe Krishna in water that has been brought from the Yamuna in a pot with 1,000 holes, then Krishna can be cured. So, Jatila, she's always very proud. I'm the most chaste woman in Vrindavan. Radhika is very unchaste. Then she came with her pot with 1,000 holes. She filled it up and gave herself Abhishek, because all the water came out from every hole. Then she was so much embarrassed, because this is proof that she is not so much chaste. This is a very embarrassing thing. Therefore, she, without saying anything to anyone, she ran away secretly. Then Jatila, she came up for her time, and also Kutila. So Jatila came first, Kutila came second, then she took her part of 1,000 holes, and also the same thing. Therefore she was very much embarrassed, and she returned. Then no one else was willing to become publicly blasphemed in such a way. Then Yogamaya said, I think Radhika, she should try. Therefore Radhika, she prayed, If I only ever thought of one man in my whole life, may my chastity be protected. Radhika took her part with 1,000 holes, but not even one drop fell from that. Yogamaya took that water from the head of Radhika and bathed Krishna in that. He immediately stood up and was cured. Then everyone was gossiping, yes, Jatila and Kutila are very unchaste, but Radhika really, she is the topmost chaste woman in Braj. Go Premanandi.
अभी बलदेव जी के रास के संबंध में बतलाया श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है ये रास लाला जो कि वो कृष्ण की सखियां अलग थी बलदेव प्रभु जी की अलग थी और जमुना जी को खींचा जमुना तो विशाखा जी हैं तो विशाखा जी को किस प्रकार से वो खींच सकते हैं और ये विशाखा जी राधा जी की सखी हैं और उनकी वैभव प्रकाश समुद्रगामिनी जमुना है ब्रज में रहने वाली वो जमुना है विशाखा समुद्रगामिनी जाने वाली वो अलग है उनका वैभव प्रकाश है इसलिए उस यमुना को खींचा जो समुद्र के तरफ में जाती है समुद्र जिनके पति हैं इसलिए इसमें कोई दोष नहीं हुआ।
Also, we heard about Sri Baladev's Ras Lila. Here in his commentary, Sri Vishwanatha Thakur explains that Krishna had a separate group of gopis and Balaram also had a separate group of gopis. Here a doubt may come that how can Balaram catch hold of Yamuna, who is otherwise Vishaka, who is Krishna's demon sati? Then the answer is given that the portion of the Yamuna which flows towards the ocean is known as Kalindi, and she is the wife of the ocean. So it is that portion of the Yamuna named Kalindi which Balaram dragged towards himself.
Biharban. Yo.
So under the guidance of Srila Gurudev, Vaishnava, Sri Chaitanya Mahaprabhu, we went to Biharvan. So Biharvan is the place of Radha Krishna's pastimes and also the place of Sri Krishna's tending cows. So as we know that Sri Krishna used to tend many cows there. Sri Krishna, he early morning used to go for tending cows, and that time Mother Yashoda used to follow him, and despite being returned so many times on the pretext of she used to follow Krishna. Krishna used to tell her, please go back. And she would say, no, your peacock feather is not right. You should set it right. Then after walking a few steps, she again come behind him. He should say that, let me chant some mantras to protect you in the forest. Then again Krishna will walk and look ahead. Then she will tell Krishna that, listen, that she will tell Subal, Shiram, that Subal should walk on his left hand side, Shiram should walk on his right hand side, Baladev should walk in the walk in the front, and you should protect Krishna, make sure that nothing will happen to him, guard him completely. Then she will tell Krishna, then again Krishna will walk a little ahead, and again she will stop Krishna and say, Vatsasthava Tandarish Vicharan Dura Pracharyaman, Nusar Vakshak Laha Brahma Vrusham Narayana Dasasi, Nikthit Tasya Yashodaya Murikur Vyad Jagat Viswara Vipushthan Vaya Gara Vrida Vasha Apakta Bhavu Sumitam. Krishna, she will tell Krishna, if you see some forest animals, then what you should do, you should remember Narayana, he is our family deity. And Krishna doesn't want to smile. He is pressing his lower lip and upper lip and he is hiding his smile. So Yashoda is completely covered by the Mahaguruja. Then finally Krishna tells her, Mother, you have to go back now because you have to send the lunch for the forest and then we have to take his lunch and you have to then you have to send lunch for us, you have to prepare the lunch. So it's you have my bhav. If you don't return now, you have to return my bhav. So he will give his whole oath to Yashoda and then Yashoda will come back. But anyways, all the gopis, they will be standing on high place mountain, just watching Krishna going. And all the long Krishna will tend cows there. The sakas will play, they will have lunch there. And there, Krishna will expand as many sakas are there. And he will honor their the prasad he has brought from home. He will feed what he has brought from the home, he will put in their mouth. And then sakas will also feed him what they have brought from their own home. Then Krishna will expand and every sakha will massage the feet of Krishna. Krishna will take as many forms as the sakhas. So this is the place of sakhyas also. They will climb on different trees, imitating the frogs, imitating the movements of birds, imitating the movement of swans. And also night time also Krishna's rasa will take place there. Evening time he will come back from the forest. Sarang Ramanatha Manakta Srimila Avada Srimila Avada Nyadri Vrinda Chepa Bhakaran Sritta Mantrakshanani Sobhat Vipa Samanita Pradatma Mahimudha Kiru Gopal Mokte Sarang Akrishna Vrinda Avada Sritta Shkhyaya Virnada. He will play the flute. His flute song will attract the cows. He will call them Vishanki, Mantasthani, Pradashungi, Pinyakshani, Mudanuki, Bhumale, Shabri, Yamsi, Aushukri, Kiti Srimila Avada, Ki Mudhi, Dhrina, Dhiki, Bani, Vidrata Mahavaya Bhagavan Chitta Bhagavan. Gopis infancy when Krishna is playing the flute and calling every single cow by the name and hearing the name of the cows, gopis will feel uddipit in the heart. And then Krishna is returning from the evening time, his face is covered by the dust and he is a little tired. Shanto Piramakruti, Gopasri, Naimatsu, Vinashu, Shreyansi, Vatkeshava. Although he is tired, but he looks very, very attractive. Then also in the night time, there will be Rasa in the Viharavan. Gopis will be dancing with Sri Krishna. He is like, this is a place very decorated by Krishna's sweet pastimes, Madhura pastime, Vatsala pastimes, Sakya pastimes. So therefore, this Vrindavan actually is decorated by Krishna's fruit song. Mukunda Murali of the Shravana Shuddha of Bandhavi, Tadamma Tadam Pitapati, Tadamma Kujandara, Karindagiri Nandini, Kamala Chandara and Dorina. So this beautiful Vrindavan Dham, this Viharavan is also part of the Kerala. As we know that Srimati Radhika, after Krishna went from Vrindavan to Mathura, Srimati Radhika went to Kerala and in Kerala she jumped in the water of Jamuna. When she jumped in the water of Jamuna, actually the Vishakha Devi took her to the sun god's planet. There she was lamenting in separation of Krishna. When she was lamenting in separation of Krishna, the wife of sun god actually told that Vishakha that take her to see the four-armed form of Narayana, maybe she will be pacified. And then Vishakha told, no, she is not attracted to any form, four-armed form. She is only attracted to the two-armed form of Krishna. She told that Gopinam Pashupendra Nandanesha Bhavasya Kastam Kudhi Vidnyanam Shavade Duruha Padavik Sancharana Pakriyam Avishnava Gavashnava Vikram Tasmin Ujjadishnavi Vyasa Mahanta Chatur Vidavuchim Rabha Dev Kunchati. Gopis are not attracted to the four-armed form. If they see the four-armed form, the love in their heart actually becomes condensed, contracted. Their love is only they are only attracted to Krishna who has two-armed form. Radhika says that the boy who has no peacock feather on the head, one who has his face is not decorated by the mirrors from the Govardhan, who has no flute in his arm.
What seems to be talking about the beauty of Krishna, how Srimati Radhika only attracted to Krishna in his two-handed form, not in four-handed form.
Vatshavan. Oh. Vatshavan.
Cheer God first. Om Chakrapati Rudhishtra Kripa Sindhu Deva Chakrapati Dharampati Guru Vishnu Yoga Nandi. In the dust of the lotus feet of my holy masters on my head, Shri Prabhupada, Shri Govind Maharaj and Shri Gurudeva, I will speak something on the Chirgat Pasana. After visiting Ramgat and Biharan under the guidance of Shri Gurudeva Vaishnavas, we went to the beautiful Chirgat. Chir Ghat means stealing the Ghat where some theft had been produced, had been performed. After performing the Katyayani Vrata, the young gopis came. That was the last day of their Vrata, and they were bathing in the Jamuna River up to their neck. And they had been doing very slow austerity for the whole months in order to please Katyayani. Every morning they would make a deity of the day, of the goddess with sand and earth and offer to her different sweetmeats and flowers. And especially they would offer more hard chanting in prayers, asking her, please, O Mahamayi, O great goddess, make it so that we can become the wives of Krishna. Let him become our husband, Pati. And here we have explained that Pati means Upapati or Param. So, for a whole month they were performing this vrata. This was the last day. And the gopis were bathing in the Jamuna. At that time Krishna, still very young, 5 or 6 years old, with a few little boys, half naked, following him, he came. And as they were bathing, he collected all their clothes and then climbing the kadamba tree that we have now religiously circumambulated today. and he disposed the different clothes of the gopis on the different branches. And then as they were returning from the bath, suddenly they saw that, where are our clothes gone? And they heard a very familiar sound, Krishna's laughter and his beautiful voice saying, oh my dear gopis, if you want your clothes, you have to come back and get them. And they engaged in a very extravagant dialogue. Gopis telling, but you are a very religious person. You are famous as the son of Nanda Maharaj and Yashoda, very religious person. You know it's not proper for you to act like that. And Krishna said, oh, but who tells me that these clothes are belonging to you? So many people come to bathe, so many ladies, why should be your clothes? No, you should come one by one and get your clothes and we'll give to you. They said, no, you don't have to do that. You go away, we'll find our clothes. Krishna says, but maybe some gopi will steal the clothes of another gopi, and I will be responsible for this theft. What will happen to me? And in this way, they have this extravagant exchange between themselves. And Krishna, it is said in the Srimad Bhagavatam, he treated them like, just like dolls, completely manipulated them. But because they were so full of love for him, actually, although he was making some extravagant demand to them, they were smiling and shyly looking at him, and actually they were enjoying the whole thing. Finally, Krishna told them, no, you have to come out and get your clothes. And then they said, well, I think we will stay in the water for one more month to make the blood vow. They were trying to escape for so many ways to come out and naked in front of him. So Krishna says, no problem. I think being inspired by your austerities, I will also spend 1 month here doing austerities with you. You in the water and me in the tree. So finally, when the gopis could see that there was no way out, they started to push each other. You go first. But none of them dared to come out. Finally they came out, and then they were all in one line. Krishna says, no, not like that. You have to go in one line like this, one after another. And they were hiding with their hair and with their hands, or with their shyness. And then Krishna was saying, this is not proper. You have taken baths, what kind of hairdo is that? You have to tie your hair very nicely. And then you have to come out, one by one. You have to get your clothes. And still there was so much hesitant, they were still making so many obstacles, so many proposing Krishna about this, but that Krishna was just, he wouldn't let go. So finally they agreed to his order, and one by one they came out. Krishna even met them offer obeisances with both hands above their heads, so there would be no shyness left. Because he said, you have committed offense to Varuna there by bathing naked, this is not proper, you have to offer obeisances. Trying to offer obeisance with one hand, covering their private parts with another hand, said, no, not like that. You have to do both hands above your head. Finally, they agreed to that. Then Krishna, one by one, gave them their clothes. So one of the teaching here is that if we want to come in front of Krishna, we must give up every single attachment. We must depend fully on Krishna and do whatever he wants, and there shouldn't be anything between him and us. You may have heard many times Srimad Madhava Maharaj when he tells the story of Draupadi. When Draupadi was calling for Krishna, first she was calling with one hand, but holding her sari with the other hand. Krishna didn't come. So finally she raised both hands, still with her teeth, but holding her sari. Krishna was not impressed. So finally when she raised both hands and completely depended upon him, then he came. So in a similar way, Krishna is teaching that to come to me, you have to be completely surrendered, and there should be no attachment whatsoever left. Otherwise, you cannot come to me. 1 second, but I'm just going to see you.
Vatsavan.
Jnananjana Salakaya Jaksu निकल पड़े। उसने बताया सके तुम लोग ये बैठो, तुम लोग कहाँ ढूंढोगे, मैं तो जा करके अपने पंखे तेल पालूंगा, बस यहाँ पड़ेंगे, कोई चिंता नहीं, मैं एक देखता हूँ। ये कृष्ण गए, हाथ में उनका दधी गौ, यानी दधी और चावल मिला हुआ अन्न, और दोनों अंगुलियों के बीच में पेटी के आचार और अरो का आचार भरा हुआ था। ये कृष्ण गए घूमने के लिए। इतने में ब्रह्मा जी आकर सबको भी चुरा करके जो मैं कंदर में छिपा दिया। कृष्ण आए स्वयं भगवान होते हुए भी कृष्ण के एक ही साथ उनका सर्वज्ञता भी है और मुग्धता भी है। तो चुंबन के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं सखा कहाँ है, बजरी कहाँ है, हाथ के दोधी का बाबा धरा के धरा रह गया, खा नहीं पा रहे, चिंता कर रहे, क्या करूं, मैं इसे छोड़ से छोड़ के कैसे जाऊं, एक ही बार ब्रज में लौटूंगा, ब्रजवासी तो क्या कहेंगे, अरे कान्हा मेरी बेटा कहाँ है, अरे बजरी कहाँ है, ऐसा चिंता करने लगे। मैं बहुत चिंतित हो गए। तो जो मैंने उनको यह दिया दिला दिया कि आप सर्वज्ञ भी हैं, सर्वज्ञ शक्ति के द्वारा जान लिया कि ये किसकी का पुत्र है। तो कृष्ण अपने आप जितने सखा थे सखा बन गए, जितने बछड़े थे बछड़े बन गए, बन करके ब्रज से प्रतिदिन आते हैं जाते हैं उच्चारण के लिए। जिनकी जैसी बोली, जिनकी जैसे स्वभाव ऐसे हो गए, और जैसे पढ़ने की स्पीड से आए थे उसे चले जाते, कोई समझ नहीं सके। इधर श्री गुरु जी ने बताया ब्रह्मोहन लीला के संदर्भ में, एक तो ब्रह्मा जी उनको एक से कुछ छिपा करके जो मैंने खाते में रख दिया, दूसरे और एक से जो है जो कृष्ण खुद प्रकट किया है वो कृष्ण है गोचरण कर रहे हैं, और जो मैंने और एक से प्रकट किया जो दूसरे प्रकट जो दूसरे प्रकाश में गोचरण चल रहा है, किसी को समझ में नहीं आया, तीन से को प्रकट किया। अब कृष्ण यदि जा रहे हैं तो ब्रह्मा जी क्या किया, लोग छिपा करके गए ब्रह्मलोक में, और इतने में से कृष्ण क्या किया, ब्रह्मा जी के पहुंचने के पहले ही खुद ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में चले गए सत्यलोक में, और लोगों को आदेश दिया, देखो मुझे पता चला कोई एक भूमि आ रहा है मेरा रूप बना करके, उनको अंदर आने मत देना, मैं कृष्ण स्वयं नाटक करेंगे, कौन सच सच समझ सकते हैं। ये ब्रह्मा जी आए अंदर जा रहे हैं, जैसे आप अपने कमरे में जाएंगे, अब नौकर को क्या पूछने जरूरत है, ब्रह्मा वेदरथ जा रहे हैं, सौकर जो नौकर थे डंडा दिया, अरे तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना चाहते हो। तो ब्रह्मा जी ने बताया उन लोगों को नाम लेकर के आए, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, आओ हम लोग का नाम भी जान लिया, एक पैर पड़ोगे तो तुम्हें चाकना चूर कर दूंगा, तुम्हारे धर्म सिद्ध नहीं रहेगा, क्या सोचते हो। ब्रह्मा जी ने बताया अरे तुम तो पागल हो गए हो, नौकर का नहीं हम पागल नहीं है, तुम ढोंगी हो पागल हो, हमारे प्रभु को अंदर बैठे हुए हैं, हमारे प्रभु ने हम लोगों को बता दिया तो एक ढोंगी आ रहा है चार सिर बना करके, आगे बढ़ोगे तो कोई ख्याल नहीं, क्या बात है। ब्रह्मा जी उनके पैर लोट आए, आ करके ध्यान लगाया, अरे ये सिर्फ भगवान कृष्ण है, तब तो उनको बहुत घबराहट हुआ। फिर मथुरा में लौट आए, राम ब्रज में विश्वमान प्रकाश में लौट आए। इतने में मनुष्य मान में एक साल बीत गया, आकर के प्रणाम किया, उठ करके देखा जितने सखा जितने बछड़े उनके लौकुटी कपड़े सब चतुर्भुज हो गए। तो दिखाना चाहते हैं ब्रह्मा जी को, देखो मैं नहीं तुम्हारा आत्मा नहीं हूँ, हमारे सखा है बछड़े हैं और उनके कपड़े हैं, सब सच्चिदानंदमय है, सब तुम्हारा आराधना है। वो कृष्ण रूप क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ब्रह्मा जी का आराधना है, गर्भोदक सारी कृष्ण चतुर्भुज खाली, इसलिए उनको दिखा दिया। अब क्या करो, फिर देखे तो वही है, इधर गोचारण भी हो रहा है, हो सकता है कि मैं जब इधर देखता हूँ तो उनको कृष्ण आकर गोचारण करते हैं, जब उधर देखता हूँ तो उधर जाकर छिपा देते हैं। चार सिर होने के नाते दो सिर से यमुना की ओर देखा, दो सिर से इधर देखा, एक में गौरव को देखा तो बोले नील सिंह भगवान है। अब क्या करें, ऐसे तो नहीं हुआ, प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करें, नौ मिठा देयम प्रभु श्री करुणामय वृंदावन सर्वतिच्छल वसन मुखाय वर्ण सजेत भवते परिसारेणु लक्ष्मण श्री मृपदे पुष्पांग जाय। बोला नौ मिठा देयम प्रभु से पहले प्रणाम कर रहे हैं, क्यों ब्राह्मण के मन में डर है,
अगर प्रणाम न करूं तो कृष्ण।
और प्रणाम ना करो तो कृष्ण बिगड़ सकते हैं, इसलिए पहले प्रणाम किया। कृष्ण का रूप वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में, कृष्ण के तीन प्रकार का रूप वर्णन है, एक हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्मा के द्वारा, दूसरे ब्राह्मण गोपियों के द्वारा, कृष्ण के प्रकोष्ठ है ब्रजगोपियों के द्वारा। इसके बाद कृष्ण कह रहे हैं, सॉरी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथापि ते देव प्रदानुज दया प्रसादवेशानुप्रीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिमो न जानन्न तु विचिरं विचिन्नम्। जो कहते हैं कि मैं भगवान की महिमा जानता हूँ, उनकी लीला जानता हूँ, कुन जानता हूँ कहने दीजिए, किंतु ये मेरे जानने का संभव नहीं है। कौन जान सकते हैं, जिसको भगवान की कृपा करते हैं, जब एक ऐसे विनुते तीन लोको तस्य सात्मा विनुते दरुसं, जिनको भगवान कृपा करके हृदय में आदि को सबके जना देते हैं, वही जान सकता और कोई नहीं। फिर बता रहे हैं, हे भगवान मुझे कुछ इस जगह कुछ बना दीजिए, वृंदावन का संभव नहीं है, तो मुझे गोकुल में कुछ मेरा जन्म हो जाए, तदस्तु में नाम सफरी भागो भवे पत्र तू अनंत तू अतिदस्ता जे नाम करके भवे जनाना भूतराज से तो पाद पल्लवम। जब कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रज में एक नाम गोकुल, तो कह रहे थे गोकुल क्या कम है, कहो अगर ये ना हो तो मेरा कोई तिरछा गली में जन्म हो जाए, और ये भी ना हो तो मैं एक पत्थर के रूप में जन्म हो जाए तो मेरे जन्म सार्थक हो जाएगा। विशेष करके ब्रज में जो धड़धड़नी है, तो महिला कमा कर बाकी सागर से पैर धरती है, उस पर मेरे पर पैर रखे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसी ब्रज की महिमा है कि हमारे आदि गुरु ऐसे प्रार्थना करते हैं तो हम लोग का कहना क्या है। इसलिए हम लोग गुरु ने सुना कि फिक्स फास्ट गो एंड गो प्रोसेस, पहली बात है सबसे बताते हैं हमारा गोल है आशा ही दास से विश्वभाव में जाएगा, कैसे हमें लोगों को स्थिर करके ये हम विश्वभाव में किसी मंदिर आधार नहीं के पल्लव आशीष भाव को रख करके हमें साधन करना पड़ेगा। जैसे गुरु मंदिर जी ने बताया पांचों वेद और मनुष्य मंदिर से शुरू करना पड़ेगा, तभी हम मंदिर आगे बढ़ सकते हैं, करके समाप्त करते हैं।
वत्सवन से हमारी यात्रा शेई में आई। ब्रह्मा जी इधर देख रहे हैं, उधर का शेई, इसलिए शेई शेई मैंने ओई, और फिर कृष्ण को देखकर कह रहे हैं ये शेई, अरे तो वही पर ब्रह्म है। इस प्रकार से उस गांव का नाम हो गया से। थोड़ी देर में चौमा एक ग्राम है, ब्रह्मा जी नौमिक देते और ब्रह्मपुर से ये सब स्तव स्तुति कर रहे हैं, और कृष्ण श्रीदाम सखा के कंधे पर एक हाथ रख करके लीला कमल घुमा रहे हैं, और बच्चे कह रहे अरे चौमा चौमा माने चार मुंह वाला, चिढ़ा रहे हैं इसलिए चौमा में। उसके बाद में हम लोगों की यात्रा एक गरुड़ गोविंद में, कृष्ण ने लीला करते करते एक दिन श्रीदाम को ही गरुड़ बना दिया और उनके कंधे पर चढ़ करके और वही लीला करने लगे। इस प्रकार से गरुड़ गोविंद से यहाँ पर आए माधुर्य का लंबिनी। साधु संग पहले तो श्रद्धा बतलाया, और साधु संग कहते हैं ग्रंथ का श्री चक्रवर्ती ठाकुर पहले श्रद्धा के स्तरों का वर्णन किया और साधु संग का कारण। श्रद्धा कैसे होती है? साधुओं के संग से, अथवा कृष्ण संबंधी कोई लीला भूमि, गंगा यमुना इत्यादि पर जो सुकृति होती है, पूंजीभूत होने पर श्रद्धा होती है, या साधु संग में श्रद्धा होती है। और साधु संग का स्तर बतला रहे हैं। श्रद्धा उत्पन्न होने पर गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करना होता है और फिर चरणाश्रय करके भजन परिपाटी और सदाचार सीखना पड़ता है। इसलिए जीव गोस्वामी ने भी इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से की है। सर्वप्रथम साधु संग में भक्ति शास्त्रों के श्रवण के द्वारा श्रद्धा होती है। साधु शास्त्र के वचन में सुदृढ़ विश्वास होना ये श्रद्धा है। इसके बाद में भजन कर्तव्य है समझ करके अब गुरु चरण गुरु जी के चरणों का पदाश्रय करता है। ये भजन करने के लिए गुरु की जरूरत है। अब यहाँ उनसे चरणाश्रय करके पिशंभेन गुरु सेवा, उनके निकट भजन पारपाटी की शिक्षा करता है। और विशंभ माने विश्वास अथवा लौकिक संबंधवत सेवा। तात्पर्य की साधु शास्त्र और गुरु पदाश्रय के भक्ति दराजा प्रवेश द्वार बतलाते हैं। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, हरि नाम नौका खानी श्री गुरु कंडल। श्रीमद भागवत में भी बतलाया है, निदेहम अद्दम सुलभम सुदुर्लभम प्लम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। बिना गुरु के चरणाश्रय किए हुए भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रीमद भागवत में बतलाया, तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमास्य। जो परम कल्याण अपना जानना चाहते हैं, जो कल्याण कैसे होगा, उसे गुरुदेव की शरण लेना चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म अर्थात श्रुति शास्त्र में पारदर्शी विद्वान हो, समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो, विशेष करके समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद्भागवत का पूरा ज्ञान हो, इसलिए कि वो शिष्यों को समझा सके, उनको कोई संदेह हो तो दूर कर सकते हैं, और साथ ही परब्रह्म में परिनिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हो, उनका चित्त शांत हो और व्यवहार में प्रपंच के प्रति प्रवृत्त न हो, विषयों से वैराग्य उनको हो। तात्पर्य है महत्कृपा से जो सिद्धि प्राप्त श्रद्धा प्राप्त कर सद्गुरु का चरणाश्रय करते हैं, गुरु में ये निम्न लिखित लक्षण हैं गुरु के, जो वेद और वेद के तात्पर्य ज्ञात श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रों में पारदर्शी हो, जो शिष्य के समस्त संदेह को दूर कर सके। जिन्होंने दृढ़ विश्वास और निष्ठा के साथ में भगवान का भजन किया है और उसके फलस्वरूप भगवान की अनुभूति कुछ कुछ आई है, जिन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त कर भगवान का अनुभव कुछ किया है, तथा शिष्य के हृदय में भी शक्ति संचार कर सकते हैं, और जो काम क्रोध लोभ इत्यादि को छोड़ दी चुके हैं, उसके वशीभूत नहीं है, और विषयों से जिनका दराज है, ऐसा गुरु का पदाश्रय करने से तब भक्ति का स्तर बढ़ेगा और प्रेम प्राप्ति होगी, अन्यथा प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। श्री रूप गोस्वामी ने दीक्षा के संबंध में कहा, गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षण विसंधैन गुरौ सेवा। गुरु पदाश्रय और कृष्ण मंत्र में दीक्षा ग्रहण कर भागवत धर्म का शिक्षा और वैष्णव आचार की शिक्षा श्रद्धाचार और विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा, इन अंगों में गुरु पदाश्रय संपन्न होता है। दीक्षा मंत्र ग्रहण से पूर्व शिष्य उनके साथ में रहकर कुछ दिन तक उनकी सेवा करे और उनका चरित्र देखे, जो कोई चरित्र में कोई अनाचार है या नहीं, ये तत्वदर्शी हैं कि नहीं है, पूर्ण विश्वास हो जाए तो उसे वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। और शिष्य गुरु भी देखता है कि ये सदाचार संपन्न और शिष्य होने लायक नहीं है या है, या भक्ति का अतिरिक्त कुछ दूसरे की अभिलाषा करता है, तब उसे दीक्षा नहीं देगी। इसी को गुरु प्रशक्ति कहते हैं। गुरु और शिष्य परस्पर स्वभाव और लक्षण आदि की परीक्षा करके देखेंगे ये गुरु है कि नहीं, ये शिष्य है कि नहीं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सही देह करे तार चिदानंदमय अप्राकृत देह तार चरण भज। दीक्षा ग्रहण के पश्चात गुरु उसको भजन की रीति, भागवत और वैष्णव सदाचारी इत्यादि की शिक्षा देते हैं। तत्पश्चात गुरु की सेवा करनी पड़ती। गुरु सेवा किसको कहते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री पति की सेवा में मग्न होकर के पुत्र इत्यादि की किसी की याद नहीं रखती, पति की सेवा में अत्यंत निमग्न हो जाती है, उसी प्रकार से गुरु सेवा के द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि गुरु सेवानिष्ठ शिष्य यदि है तो श्रवण कीर्तन इत्यादि यदि नहीं करे भी, छूट भी जाए, तो भी गुरु सेवा के से गुरु की कृपा से वो सब शास्त्र का तात्पर्य समझ करके भजन राज्य में सब पड़ जाएगा। फिर से सोचो, कोई यदि गुरु की सेवा कर रहा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और श्रवण कीर्तन भी नहीं करता, दिन रात गुरु की सेवा में लगा रहता है, समय नहीं उसको है, तो समस्त शास्त्रों के जितने तात्पर्य उसके हृदय में प्रकटित हो जाते हैं और वो भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। आचार्य शंकर के बहुत से बड़े बड़े विद्वान शिष्य थे और उनके कपड़े धोने वाला, रसोई बनाने वाला, खिलाने वाला एक सेवक था, वो निरक्षर पढ़ा लिखा नहीं था। एक दिन शंकराचार्य के कपड़े लेकर के गंगा के बद्रीनारायण में, गंगा के उस पार में, भगीरथ के उस पार में कपड़े उनके धोने के लिए गया और उसको सुखाते बहुत देर हो गई। इतने में उनके और पद्मपाद और जितने भी शिष्य थे, हस्तामलक और पद्मपाद और सब बहुत से, उन लोगों ने कहा कि आप पाठ आरंभ कीजिए वेदांत का। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे वो शिष्य के लिए अपेक्षा करना है, वो मूर्ख तो कुछ जानता नहीं है, आप आरंभ कीजिए। किंतु इन्होंने आरंभ नहीं किया। इतने में वो दौड़ता हुआ आया और आकर के ऐसा सुंदर काव्य और कठिन भाषा में, संस्कृत भाषा में गुरुजी का स्तव करने लगा। ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे ये सब जान गया। ऐसे ही जस्य देवे पराभक्ति, जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते करता ही आता। जो गुरु की ऐसी सेवा करता है जैसे उपास्य देव कृष्ण है, तो शास्त्र उसके हृदय में प्रवेश कर जाए।
हरे कृष्णा, काल एकादशी है, काल वृंदावन की परिक्रमा है, जो लोग हरिनाम की इच्छा के लिए आग्रह किया है, तो प्रवचन के बाद प्रभु के पास में नाम दिखाते हैं, काल सुबह 9:30 बजे हरिनाम दीक्षा होगी, केवल वहां पर डिशेस हैं, तो रजिस्टर करने की जियो प्रभु आफ्टर क्लास एंड दे हैव टू प्रेजेंट देयर 9:30 AM दे कैन गो परिक्रमा before and come to 9:30 या हरिनाम दिखाने में तारा परिवार समाज सभा के लिए सारनाम दे दिए आसन। जो लोग हरिनाम दीक्षा लेंगे या लेंगी वो लोग पहले निकल जाए परिक्रमा में और सारनाम दे दे वापिस आकर के हरिनाम दीक्षा के लिए आ जाए। अभी आठ प्रवचन के बाद जो कुछ का सामने दिखा लें
महाराज।
Tomorrow is a communication workshop from 2:00 to 4:00 upstairs, where everyone takes the prasad with Anantapur. Anantapur. Haribol. Srimad Bhagavatam by Sri Krishna Chaturthi Thakur. So we are discussing how Shraddha is awoken by Sadhu Sangha. But how do we achieve Sadhu Sangha? By accumulation of pious activities related to bhakti, bhakti moksha kriti, by performing activities such as taking bath in the Ganga, visiting different temples. By this, we collect sikriti, and when that sikriti is very thin, then we can achieve the association of the sadhus. That Sadhu Sangha awakens a faith, and that faith will inspire us with an understanding of the necessity of taking shelter of a bona fide guru. After taking shelter of the bona fide guru, the spiritual master will instruct the disciple on the process of bhajan and the proper behavior of a Dikshit Vaishnava that is called sadachar. Sujiva Goswami says, by hearing bhakti shastra, devotional literatures continuously, Shraddha of faith awakens. That Shraddha is characterized by unflinching faith, that one understands my only duty is the performance of Bhagavad Bhajan. But to perform Bhajan, I need a spiritual master. After taking shelter of the Guru, one will perform Vishwamedha Guru Seva. One will serve the Guru full of intimacy, and from him learn the process of bhajan. The relationship with the Guru will become like Loki Sapanuba, means very close, like almost like a materialistic friendship. It's so close, so near and dear. This Guru Seva is the doorway by which to enter the kingdom of bhakti. Therefore Bhagavad has also said that Videha Madhyam Suravam Labam Sukalpam Guru Kanadam. The spiritual master is like a captain to in order to take the boat of the human body across the ocean of birth and death. Deva Srimad Bhagavatam has said, Tasma Guru Pupadyeta Nikyasa Shirdama Sati Parena Nishnatam Brahmani Pasama Sayam. The disciple will think, Nikyasa Yudama, how I can achieve the topmost auspiciousness in my life. Therefore, in order to understand that, he approaches the feet of a bona fide guru. What are the symptoms of such a bona fide spiritual master? He must be completely expert in all the shastras, especially the essence of the shastra, which is Srimad Bhagavatam. He must be equipped and be able to dispel the doubts of the disciple.
He must be able to enter the heart of the disciple and empower the disciple. And he must be free from all types of bad attachments and behavior. By the mercy of such a perfected spiritual master, by this Mahakripa, one will achieve all perfection. Therefore, again, in other places discussed the symptoms of such a guru. He must be expert in the Veda, especially the Srimad Bhagavatam. He can dispel all doubts, and he himself must perform bhajan with full faith and determination. Because of performing bhajan in such a manner, he must have some realization of the Lord himself. He has the power to empower, he has the power to infuse the disciple with enthusiasm for the performance of Hari Bhajan. Such a bona fide spiritual master must be free from all type of material attachments, and he must be free from the control of the six enemies, like lust, greed, anger, envy, madness, and illusion. By the service, by serving such a spiritual master, one will achieve prema bhakti, otherwise never. Therefore, Srimad Mahaprabhu explained the Srimad Book of Swamipada, the 64 limbs of devotion, and the first five are concerned with the relationship of the spiritual master. One must take shelter of such a bona fide sadhu. From him one will learn all proper types of behavior, Vaishnava Sadhacha, how to worship the deity, how to mix and perform sadhusanga. From that guru one will take initiation into Vishnu mantra and also take instructions on the process of devotion. One must also engage oneself in the service of such a guru. Therefore, before accepting mantra, the disciple should serve, should remain near the spiritual master and serve him for some time. In that time, the disciple has a full opportunity to examine the character of the guru, to see if there is any faults in the spiritual master, or if the spiritual master has realized anything. In a similar vein, from that time, the guru will also examine the disciple, whether he is qualified to become a disciple, whether he has other desires except for Hari Bhajan. Thus, Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur said there should be a mutual examination between the guru and the disciple. Therefore, Diksha Kali Bhakta Kali Atmasam Aban, Sri Kali Krishna Kali Atmasam. At the time taking initiation, the devotee completely surrenders to the spiritual master. At that time, the spiritual master bestows upon the disciple a spiritual body which is as good as Krishna. And in that, with that spiritual body, the disciple performs the service of Sri Radha and Krishna. Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur says, how a disciple should serve the spiritual master, just like a very chaste wife will even neglect the remembrance of her children and other such activities in order to exclusively focus on the spiritual master. In the same way, a bona fide of service of the husband. In the same way, a bona fide disciple must become completely absorbed in the satisfaction of the spiritual master, forgetting everything else. By this guru seva, one should have complete faith, I will achieve all perfection. Even if one's absorption in guru seva awakens an obstacle in the performance of shravan and kirtan, for example, he's too busy to hear class or to perform bhajan, it doesn't matter. The service of the guru will bestow the result of shravan and kirtan also. And by guru seva, the meaning of all the scriptures will enter the heart. A nice example in this regard is Sripad Sankaracharya. He had one disciple named Govinda, and he was always engaged in washing Sripad Sankaracharya's cloth, cooking for him, washing pots and all that other type of thing. One day, Sripad Sankaracharya, when he was in the Himalayas, he was about to give class. There were maybe 5,000 disciples there. They were very, very learned. That time, Sankaracharya was simply waiting. And all the learned disciples said, "Oh Gurudev, please commence your explanation of the scriptures." Everyone is hearing except Govinda, but he's an idiot. He doesn't know anything anyway, so continue. But Sri Sankaracharya didn't stop. Meanwhile, Govinda Pad was washing the cloth of Sri Sankaracharya on the other side of the Ganga, and he came running late. He sat there and began offering many amazing prayers full of high-class Sanskrit
in many deep, deep realizations, and all the other disciples were. They couldn't understand what he was saying, so much these realizations were deep. Srimad Sankaracharya said, this is the result of Vishwambhava Guru Seva, serving the Guru with intimacy. Go, Premanandi, tomorrow.